सो हम लोग श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 17th चैप्टर 17वां अध्याय पहले श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच निशम्यात्म भुवा गीतम कारणम शंकयोजितः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की श्री मैत्रेय ने कहा, विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्गलोक के निवासी देवता समस्त भय से मुक्त हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। तात्पर्य, स्वर्गलोक के निवासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकार ग्रस्त होने जैसी घटनाओं से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, अतः वे ब्रह्मा के पास परामर्श हेतु गए। इससे यह संकेत मिलता है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। इस संसार में चार मुख्य कार्यकलाप हैं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय तत्व विद्यमान रहता है प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में जिसमें सूर्य तथा चंद्र लोक सम्मिलित हैं, और इस पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के जैसे ही सिद्धांत पाए जाते हैं, अन्यथा देवता अंधकार से इतने भयभीत क्यों होते। देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी मीन्स गुरु, जबकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सामान्य जन अधिकारी का अनादर करते हैं। यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सकें तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रतिकूल अवस्था सुधर जाए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हों, किंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सके जो समस्या की वास्तव में व्याख्या कर सके तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पात का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम शांतिपूर्वक वापस चले गए। आज अनुलंबित भुजो कनकावधातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोंदो। पंच तत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं सर्वसाक्षी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कुछ इस श्लोक पर चर्चा करता हूँ, और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके मंदिर में भगवान का षटभुज अवतार का चित्र कहाँ है? कितने लोगों को पता है? आप लोगों को पता नहीं है? देखो, एक यहाँ पर है और एक को पीछे है, दो जगह है ना, आप ये देख रहे हैं बीच में, आप माताएं देख पा रही होंगी ना अभी, षटभुज अवतार भगवान का है ना, एक पीछे भी है। सो बहुत महत्वपूर्ण ये भगवान का स्वरूप है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने ये सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था अपना षटभुज अवतार, और इसमें चैतन्य महाप्रभु, भगवान राम और भगवान कृष्ण तीनों जो हैं इसके अंदर आप दर्शन कर सकते हैं ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। सो ये सर्वसाक्षी प्रभु की कृपा है कि आप लोग इसके दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत दुर्लभ है ये चित्र एक्चुअली में। सो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि सारे देवी देवता बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार के कारण ने अभी जन्म भी नहीं लिया है ना, अभी तो माँ के गर्भ में ही है, लेकिन फिर भी पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है ना? और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में पहले कौन पैदा हुआ था? हाँ, पहले हिरण्याक्ष पैदा हुआ था और फिर बड़ा कौन है? हाँ, हिरण्यकशिपु। ये बड़ी अजीब सी बात है, नहीं कि पैदा पहले हिरण्याक्ष हुआ और बड़ा भाई कौन हो गया? हिरण्यकशिपु। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माँ के गर्भ में पहले हिरण्यकशिपु कंसीव हुआ था, पहले हिरण्यकशिपु का गर्भाधान हुआ था, तो इसीलिए हिरण्यकशिपु पड़ा है, हालांकि जन्म पहले हिरण्याक्ष का हुआ था, है ना? तो आप देखो हमारे शास्त्र कितने सूक्ष्म दृष्टि से हर चीज का विश्लेषण करते हैं, नहीं? इसलिए हमें कभी अपने जो शास्त्र है उसको माइथोलॉजी नहीं मानना चाहिए, है ना? हमें हमेशा यही मानना चाहिए कि हमारे शास्त्र में जो चीज हमारे आचार्यों ने दी है, जो भगवान की वाणी हमारे शास्त्रों में दी है, वो बहुत ही एक्यूरेट है एकदम, और फैक्ट्स हैं, देख के लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बैठे कुछ दिमाग में आ गया लिख दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल देख के पूरा विश्लेषण करके रिसर्च करके लिखा हुआ है ना। सो खैर, देवी देवता बहुत परेशान हो गए और परेशानी का कारण उनको समझ नहीं आ रहा था, तो वो लोग फटाफट गए ब्रह्मा जी के पास जो स्वयं भू है, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है स्वयं भगवान से हुई है, सो उनकी उत्पत्ति का कोई भौतिक कारण नहीं, इसलिए उनका एक नाम है स्वयं भू। सो सबने पूछा ब्रह्मा जी से कि सब क्या हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब अंधकार छा गया, कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका कारण क्या है, क्या करना चाहिए, आप प्लीज हमें हेल्प कीजिए, है ना? सो प्रभुपाद ने यहाँ पर दो बहुत विशेष प्रभुपाद ने पॉइंट्स इस तात्पर्य में लेके आए हैं। प्रभुपाद पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में चाहे वो नीचे के लोगों, हाँ, अतल वितल सुतल पाताल महातल तलातल, या ये पृथ्वी है भूतल, या ऊपर के लोक हैं जो भी ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक इंद्र लोक, जो आपके चंद्र लोक सूर्य लोक, हाँ, जना तपा लोक महर लोक, ये सारे जो लोक हैं, ये कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो भय से मुक्त हो, सारे ग्रह जो है वो भय की ग्रिप में है, भय की पकड़ में है सारे ग्रह, जितने भी जीव इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, चाहे वो 1000 आंख वाला इंद्र क्यों ना हो, वो भी डरता रहता है, और आप आगे आप पढ़ोगे कि इंद्र को भगा दिया था हिरण्यकशिपु ने, नहीं भगा दिया था ना इंद्र को, और इंद्र ने क्या किया, भगवान से सेवा मांगी कि आप प्लीज मुझे मेरा राज्य लौटाइए। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी मुक्त नहीं है, तो जब इस भौतिक संसार में कोई भी भय से मुक्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम लोग भी भय से मुक्त नहीं है, है ना? कोई लोग इसको भय बोलते हैं, कई लोग तनाव बोलते हैं, नहीं? तनाव कहाँ से आता है? तनाव आ रहा है अनिश्चितता है, आगे क्या होगा, बच्चे आपके, या अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो तो रिजल्ट का क्या होगा, एग्जाम देने से पहले लोग सोचते हैं पेपर डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, नहीं? सो एक बार मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पेपर डिफिकल्ट या इजी नहीं होता? पेपर डिफिकल्ट होता है या इजी होता है? वो स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है ना. अगर प्रिपरेशन है तो इजी है, अगर प्रिपरेशन नहीं है तो जो डफर है स्टूडेंट उसको सारे पेपर उसको अगर बोलो एबीसी लिख दो, जिसको एबीसी आती नहीं है उसके लिए वो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है नहीं. सो बच्चे जो है वो सोचते रहते हैं कि पेपर डिफिकल्ट ना आ जाए, माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे का पेपर डिफिकल्ट ना आ जाए, फिर पेपर दे के आते हैं तो सोचते हैं रिजल्ट ठीक ठाक से आ जाए नहीं. हमेशा टेंशन में, फियर में हमेशा रहते हैं. तो जब इंद्र तक, तो इसमें कुछ बहुत आश्चर्य की बात नहीं है. एक्चुअली में माया देवी का ये हथियार है. माया देवी जो है वो काबू में रखती है इस डर रूपी हथियार से कि डरते रहो काम करते रहो, है ना. अगर डर खत्म हो जाएगा तो लोग मनमानी करनी शुरू कर देंगे नहीं. तो माया देवी जो है वो सबको डरा के रखती है कि डरते रहो और भैया मेरी गुलामी करते रहो. तो अगर, और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन हो चुना. ब्रह्म लोक में भी यही सब चल रहा है ना. आप ये मत सोचो कि वहां पे कुछ बहुत अच्छी बातें चल रही हैं. चलो जैसे यहाँ पर स्थूल शरीर की प्रधानता है, वहां पर सूक्ष्म शरीर की प्रधानता है. लोग ज्यादा देर तक जी लेते हैं मान लिया, लेकिन मर वो भी जाते हैं नहीं. पुनरावर्तन अर्जुन दोबारा उनको धरती पर जन्म लेना पड़ता है नहीं. और कृष्णा और कृष्णा भगवत गीता में कह भी रहे हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, है ना. ये जो पृथ्वी लोक है ये सेंटर है, ऊपर जाओ नीचे जाओ घूम फिर के पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा नहीं, क्योंकि नीचे की योनियां भी सारी भोग योनियां है और ऊपर की योनियां वो भी भोग योनियां है. फर्क है कि किस तरह का भोग चल रहा है. नीचे जो है वो शारीरिक स्तर पे ज्यादा भोग चलता है, ऊपर मानसिक स्तर पे ज्यादा भोग चलता है, लेकिन चल भोग ही रहा है ना. सो जब नीचे के लोग कष्ट थोड़े ज्यादा मिलते हैं भोग वगैरह करके ऊपर आ जाते हैं पृथ्वी लोक में, ऊपर के लोग भोग करके नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आके ये कर्म योनि मिलती है उसमें फिर भोग शुरू कर देते हैं, उसमें फिर कर्म करते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं. कारणम गुण संकस्य सद असद योनि जन्म सु, दोबारा से काम करेंगे ऊपर चले जाएंगे नीचे चलेंगे, यही काम चल रहा है. और ये पूरे काम, इस पूरे प्रकरण में लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं. और आप अगर किसी डिप्रेशन के मरीज को देख लो तो लगता है ये पता नहीं जी क्यों रहा है, वो भी सोचता है मैं जी क्यों रहा हूँ नहीं. लेकिन जो लोग डिप्रेशन के मरीज नहीं है, जो सोचते हैं हम झेल सकते हैं, हम सह सकते हैं फियर को, हम लोग तनाव को सह सकते हैं, वो अंदर अंदर जलते रहते हैं. लेकिन खुश कोई नहीं है इस भौतिक संसार में, हर व्यक्ति लगातार जल रहा है, झुलस रहा है इस भौतिक जगत के दावानल के अंदर नहीं. इसीलिए तो बोला है संसार दावानल, दावानल है. यहाँ पर बड़े से बड़ा जीव, छोटे से छोटा जीव, सब जो भी आग की लपट में आएगा झुलसेगा, है ना. क्योंकि ऐसा शरीर नहीं हमें मिला जो कि आग की लपटों से हमें बचा सके नहीं. सो प्रभुपाद एक पॉइंट बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी आएगा, चाहे वो कितने ही ऊंचे लोक में हो चाहे कितने नीचे लोक में हो, सब हमेशा डर के रहेंगे. और दूसरा पॉइंट वो ये बोल रहे हैं कि चलो मान लिया सब लोग डर रहे हैं, तो सब लोग डर रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं कि आप किसी अथॉरिटी के पास, किसी गुरु के पास जाओ या किसी गुरु के पास नहीं जाओ. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो गुरु के पास जा रहे हैं वो लोग का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो परिपक्व है, हायर है, उच्च है, श्रेष्ठ है उनकी बुद्धि। और जो लोग गुरु के पास नहीं जा रहे उनकी जो बुद्धि है वो निकृष्ट है, नीची है, घटिया है ना। गुरु के पास जाने का मतलब है सनाथ होना, और गुरु के पास नहीं जाने का मतलब है अनाथ होना। तो प्रभुपाद यहां पर दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सनाथ और अनाथ, है ना। एक जगह प्रभुपाद भागवतम के पुरपोर्ट में चर्चा करते हैं कि जो छोटा सा बच्चा होता है, सपोज कोई 6 महीने का, 1-1.5 साल का बच्चा हो, उसमें कितनी ताकत होगी? कोई ताकत नहीं होती, नहीं। लेकिन अगर वो उसका पिता बहुत शक्तिशाली है, 7 फुट का लंबा चौड़ा, अगर वो अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ है तो कितना ताकतवर है वो बच्चा, कितना ताकतवर है? जितनी ताकत उसके पिता में उतनी ताकतवर है, नहीं। अगर वो बच्चा वैसे ही अकेला कहीं पे खेल रहा होगा तो उसको एक छोटा सा कुत्ता या बिल्ली भी आके काट सकती है, नहीं, या कोई उसको दुबला पतला सा आदमी भी आके डरा सकता है। लेकिन अगर वो पिता की गोदी में है तो कौन माइकल आला के उसको डराने वाला है, नहीं, कोई उसको डरा नहीं सकता, है ना। तो प्रभुपाद ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं भागवतम में कि जो बच्चा है, जिस तरह बच्चे की ताकत उसके पिता की ताकत से डिफाइन हो रही है, गलत है, सही है? जो बच्चा है उसकी ताकत उसके पिता की ताकत से डिफाइन हो रही है, उसी प्रकार जो भक्त है उसकी पावर कृष्ण की, गुरु की शक्ति से डिफाइन हो रही है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण योगेश्वर है। कृष्ण सारी योगिक शक्तियों के स्वामी हैं। कृष्ण से साक्षात भय भी थरथर कांपता है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं जो भक्त है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है, इसलिए कृष्ण भक्त भी क्या है? कृष्ण भक्त भी योगेश्वर है। और क्योंकि कृष्ण को कुछ भय नहीं है, इसी प्रकार से कृष्ण भक्त को भी कोई भय नहीं होता। क्यों भय नहीं होता? क्योंकि उसने कृष्ण की शरण ली हुई है। कृष्ण की शरण लेने का मतलब क्या है? अगर हम बोले कि कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की शरण लेने का मतलब क्या है, आप ऐसे कौन बताएगा? कृष्ण के प्रतिनिधि। सो कृष्ण की शरण लेने का मतलब है कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधियों की, कृष्ण भक्तों की शरण लेना। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि कृष्ण की शरण लेने का मतलब है भक्तों को कर दो एक तरफ, हाँ, और सीधा कृष्ण से बात करेंगे, वो बात नहीं चलेगी, है ना। वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लिक नहीं करता, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता, नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, नहीं। हम जाके सामने खड़े हो जाए, हम बोले भाई हम तो आ गए, अब बताओ क्या करना है, तो कृष्ण कहेगा मैं क्या बताऊं क्या करना है, तुम्हें नहीं पता क्या करना है, नहीं। तो कृष्ण की सेवा कैसे करनी है वो कृष्ण भक्त बताएंगे। तो जब बात होती है कि कृष्ण शरण लेनी है, कृष्ण शरण का मतलब है कृष्ण और कृष्ण भक्तों की शरण लेना, मतलब गुरु की शरण लेना। और अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे तो जो शक्तियां कृष्ण में है वो शक्तियां हमें स्वतः उसकी सुविधा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे प्रोटेक्टर है, हमारे रक्षक है, है ना। जैसे एक बार जब रुक्मिणी स्वयंवर हो रहा था, तो रुक्मिणी स्वयंवर में हालांकि कृष्ण को इनवाइट भी नहीं किया था, सिर्फ एक ही जन ने इनवाइट किया था भगवान कृष्ण को स्वयंवर में। किसने इनवाइट किया था? स्वयं रुक्मिणी देवी ने नहीं। सो भगवान कृष्ण जब जाने लगे रुक्मिणी देवी के स्वयंवर में, तो उन्होंने महाराज उग्रसेन से बोला कि मैं जरा होके आ रहा हूँ, आप जरा रक्षा करना पीछे से राज्य की। तो महाराज उग्रसेन ने कहा मैं कैसे रक्षा करूं, रक्षा तो आप कर रहे हो, मैं तो बैठा हुआ हूं यहां पर, तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ, तभी मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। अगर आप छोड़ के चले गए, मैं सुरक्षित महसूस नहीं करता, मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। नहीं, इसीलिए जो भक्त हैं, भक्त हमेशा ये प्रार्थना करता है कि मुझे कृष्ण और कृष्ण भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे। एक हमारे बहुत ही महान आचार्य हैं, उनका जो नाम है यमुनाचार्य। सो यमुनाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा स्त्रोत रत्ना, तो उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा, उन्होंने लिखा भवंतम एवानुचरण निरंतरः प्रशांत निशेषः मनोरथांतरः कदाहम एकांतिक नित्य किंकरः प्रहरिष्यामि सनाथ जीवितम्। यमुनाचार्य कह रहे हैं भगवान को कि आप प्लीज मुझे सनाथ बना दो, आप मुझे अपना नित्य सनातन किंकर अर्थात सेवक बना दो। अगर मैं आपकी निरंतर सेवा कर पाऊंगा तो मैं बहुत ही सुख का अनुभव कर पाऊंगा, अगर मैं निरंतर आपकी सेवा में नहीं लग पाया तो मुझे कोई ना कोई भय हमेशा सताता रहेगा, है ना। भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा में लगाओ। इसलिए अगर आप देखो प्रभुपाद कितने सुपर एक्सपर्ट हैं, प्रभुपाद से पहले बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए और बहुत सारे संत भी आए, वैष्णव भी आए, और उन सब ने क्या किया, उन सब ने भक्ति की ट्रांसलेशन की। सो उन सब ने भक्ति की ट्रांसलेशन क्या की, भक्ति का अनुवाद क्या किया उन्होंने, डिवोशन। लेकिन जब प्रभुपाद जब ग्रंथ लिख रहे थे तो प्रभुपाद ने भक्ति की ट्रांसलेशन क्या की, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने कहा भक्ति का मतलब सेवा है, बहुत एकदम क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया भक्ति का मतलब सेवा। इसका मतलब अगर हम जप कर रहे हैं तो जप क्या है, भगवान की सेवा है। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग भगवान की सेवा है। अगर हम प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की सेवा है। प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान की सेवा है। हर अंग भक्ति का, भक्ति के कितने अंग हैं, भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, 9 मुख्य अंग हैं, है ना। सो भक्ति का हरेक अंग भगवान की सेवा है। हम कोई भी कार्य करें अगर हम उसको सेवा समझकर नहीं करेंगे तो उसका फल वैसा नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, हो सकता है ऐश्वर्य मिल जाए, धन संपत्ति ये सब मिल जाए, लेकिन अगर हम सेवा समझकर नहीं करेंगे तो हमें वो फल जो है, जो वास्तव में जो फल है, भक्ति का फल क्या है, कृष्णा प्रेम। भक्ति का फल है कृष्णा प्रेम, और प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब है सेवा। घूम फिर के सारी बात कहां पे आ जाती है, सेवा पे आ जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग से क्या होगा, हमें और जप करने की रुचि आएगी और जप करने का अवसर मिलेगा। हम सेवा क्यों कर रहे हैं कि हमें और अधिक सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये प्रभुपाद ने पूरे संसार में इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की, और प्रभुपाद ने करोड़ों मंदिरों की स्थापना की है, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, सब जगह प्रभुपाद ने स्थापना की है। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, अभी हम सिर्फ कुछ हजार मंदिर देख पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने करोड़ों मंदिर की स्थापना प्रभुपाद पहले से ही कर चुके हैं। और उन सब मंदिरों की स्थापना करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि आप सब लोग यहाँ पर आओ और देखो कैसे आप एक घर को, घर की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, और वापस आप घर जाओ और जो यहाँ से सीख के गए थे उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करो, अपने घर में लागू करो, मतलब अपने घर में हर कार्य भगवान की सेवा के अनुकूल करो। अगर जैसे मंदिर में भोजन बनता है, भगवान के लिए बनता है, आप अपने घर में जाओ भोजन भगवान के लिए बनाओ। हाँ, यहाँ पर प्रचार हो रहा है, आप अपने घर को प्रचार के लिए उपयोग में लाओ। नहीं, यहाँ पर वैष्णवों को आमंत्रित किया जाता है, आप अपने घर में वैष्णवों को आमंत्रित करो। तो जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, हर कार्य में कृष्ण और कृष्ण भक्त केंद्र बिंदु में। उसी प्रकार जब हम यहाँ से, हम सबको सीख के जाना है, ये सब स्टडी सर्कल्स हैं, ये कुछ लोग बोलते हैं ना आज के आनंद की जय, बोगस बात है। आज के आनंद की जय क्या है, हम लोग हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। आज आनंद है, कल नहीं है, कल नहीं था, बेकार बात है। मंदिर में ये वैकुंठ धाम है, यहाँ पर हर क्षण आनंद के अंदर चल रहा है। यहाँ आके हमारा मकसद है यहाँ पे आने का कि हम ट्रेनिंग लें, हम शिक्षा लें कि कैसे हर क्षण भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कैसे कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख सकते हैं, और जब हम घर में जाएं उसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि घर में कुछ और चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, आपके घर में और इस घर में कुछ फर्क नहीं है। और वो अगर थोड़ा बहुत फर्क है, उसको खत्म करना किसका काम है, उसको खत्म करना हमारा काम है ना। सो इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे कि पहले लोग जैसे गांवों में काम वगैरह नहीं होता था, तो लोग शहर में गए और किसी दुकान पे गए, उसको बोला प्लीज मुझे काम पे रख लो, तो दुकानदार कहता था कुछ काम नहीं है भागो यहाँ से। तो व्यक्ति कहता था चलो सैलरी मत देना। अब बिना सैलरी के व्यक्ति को कौन भगाएगा, भगाएगा कोई? अगर कोई आ गया आदमी आपके पास आ जाए, बोले मुझे देखो प्रभु मुझे आप सैलरी मत देना, मुझे बस काम पे रख लो, कोई पागल होगा उसको भगाएगा? आप लोग चल ठीक है यार, कुछ पैसे देने नहीं है, चल बैठ जाओ। वो सुबह से शाम तक बहुत अच्छे तरह से काम करेगा, क्या आप उसको रोटी खिलाओगे नहीं खिलाओगे, खिलाओगे या नहीं खिलाओगे? तो उसको रोटी खाने को मिल गई, उसने आपके पास हफ्ता 10 दिन काम किया, आप बोलोगे यार काम तो सही कर रही है, तो फिर आप उसको कुछ पैसे दोगे नहीं दोगे? तो आप उसको पैसे भी दोगे नहीं। इसी तरह से जब भक्त भगवान की सेवा में जुड़ता है तो वो कुछ सैलरी नहीं मांगता, वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, लेकिन क्या भगवान उसको कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान उसको खाना भी देते हैं और पैसा भी देते हैं नहीं। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, भगवान हमें बहुत अच्छे से अच्छा, मैं मुझे आप लोगों का पता नहीं, हो सकता है आप लोग बहुत अमीर परिवार से हो, मैंने इस कौन में आने से पहले लगातार 7 दिन कभी भी इतना सुस्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था, हो सकता है आप लोगों ने खाया हो। जो इस कौन की फीस्ट है पूरे संसार में कहीं नहीं मिलती, मिलती या नहीं मिलती? कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी जाकर देख लेना, मैंने भी वृंदावन में बहुत धक्के खा लिए। जो इस कौन के अंदर फीस्ट मिलती है, जो प्रसाद मिलता है, सुबह शाम आप कभी भी आ जाओ हाँ, बिना टोकन के आपको प्रसाद मिलेगा, और उससे स्वादिष्ट प्रसाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में बना ही नहीं सकता नहीं। और आप इस कौन के मंदिर में आ जाओ, सारी चिंताएं वो दरवाजे पे छूट जाती हैं, अंदर आने के बाद पता ही नहीं चलता। अभी आप लोगों को टाइम का पता ही नहीं है क्या टाइम हो गया, अब आप घड़ी की तरफ देखोगे तो पता चल जाएगा टाइम का पता नहीं चलता कहाँ पे टाइम चला गया। पीछे हम लोग एक हफ्ते के लिए, लास्ट वीक हम लोग जगन्नाथ पुरी की यात्रा पे गए थे करीब 50-60 भक्त, हमें पता ही नहीं था संडे है कि मंडे है, 3 बज गए 5 बज गए कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कौन सी अखबार आ रही है यहाँ पे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मोदी जिंदा है मर गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, टाइम ही नहीं है, और पीछे से काम धंधे का क्या होगा। कई हमारे साथ ऐसे लोग थे जो कि अकेले बिजनेस संभाल रहे थे, वो दिल्ली में आए तो काम चलेगा, दिल्ली में नहीं है तो काम नहीं चलेगा, वो भी हमारे साथ एक हफ्ता रहे, उसने भी फोन नहीं किया अपने वहां पे, ओ भैया चल रही है ना फैक्ट्री चल रही, ना उसने फोन किया ना उसको फोन आया, कई जगह तो सिग्नल भी नहीं होता था। सो वापस आके देखा सब चल रहा था, नहीं कुछ तबाह नहीं हुआ, हर चीज चलती रही। तो भगवान की जो सेवा है, अगर आप कुछ नहीं भी मांगोगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देंगे, योग क्षेमम वहाम्यहम, जो आपके पास है भगवान रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो भगवान देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भक्त मांगता है, फिर भी भक्त एक चीज मांगता है, भक्त क्या मांगता है, भक्त बोलता है प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोह देह प्रेम धन, कि बिल्कुल दरिद्रों में कुछ मेरे पास में धन संपत्ति नहीं है, कुछ बिल्कुल कंगाल हूं, जैसे भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं आप ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तो कंगाल हूं कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवा पाछे पाछे, आपके पीछे भाग रहा हूं, मुझे प्लीज कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे मुझे धन चाहिए, और कौन सा धन चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम का धन चाहिए। कृष्ण प्रेम का धन मतलब क्या है कि हमें डर, डर की तो बात दूर है, भक्त जो है वो ये नहीं सोचता कि कुछ विपत्ति आ जाएगी तो डर लगेगा। कुंती महारानी आप देख लो, कुंती महारानी तो बिल्कुल ही उल्टा कह रही है, जिस चीज से लोग डर रहे हैं कुंती महारानी कह रही है मुझे प्लीज वही दे दो। लोग डरते हैं विपत्तियों से, लोग डरते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए हमारे लाइफ में, नहीं। आप पांडवों को देखो, पांडवों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद भगवत गीता के शुरू शुरू में पहले चैप्टर में प्रभुपाद डिस्कस करते हैं 6 आतताइयों की, नहीं 6 आतताई कौन होते हैं, जो जहर देता है, घर को आग लगाता है, स्त्री का हरण कर लेता है, नहीं आपके घर को हड़प लेता है, संपत्ति हड़प लेता है, आपको हथियार लेके मारने के लिए आता है, क्या इनमें से कोई ऐसी वस्तु है जो पांडवों के साथ नहीं हुई, हर चीज हुई। भीम को जहर खिला दिया, लाक्षाग्रह में आग लगा दिया, द्रौपदी का हरण कर ले, वो जयद्रथ गया था हरण करने के लिए, नहीं, और दुशासन ने और दुर्योधन ने मिलकर कर्ण के साथ में उनको निर्वस्त्र करने की भी चेष्टा की, नहीं हथियार लेके मारने आ गए कुरुक्षेत्र में, क्या नहीं हुआ। और ये सब झेलने के बाद क्या ये कष्टप्रद नहीं था, बहुत कष्टप्रद था, सब झेल लिया। उसके बाद कुंती महारानी क्या कह रही है, वो प्रॉब्लम्स अच्छी थी, नहीं यही कह रही है ना, वो प्रॉब्लम्स अच्छी थी कि आप हमारे साथ में थे। भक्त जो है वो प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, क्योंकि भक्त के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भक्त के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कृष्ण का विस्मरण, कि कृष्ण ही भूल गए हम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भक्त ये सोचता है कि ऐसी परिस्थिति तो नहीं आ रही कि मैं कृष्ण को ही भूल जाऊं, कृष्ण भूलने का चांस सुख में ज्यादा है कि दुख में ज्यादा है, सुख में ज्यादा है कृष्ण को भूलने का चांस, इसलिए भक्त जो है वो घबराते हैं सुख से। लेकिन क्या सुख मिले तो भक्त ठोकर मार देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभाला, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज सबने राज्य संभाला, लेकिन उन्होंने राज्य संभाला एज ए सर्विस, सेवा के रूप में। तो अगर आपके पास धन है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपके पास अच्छा मकान है, प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसको एज ए सर्विस, जब तक आप उसको एक सेवा के रूप में अगर आप उसका प्रयोग करेंगे, हमेशा ये सोचेंगे कि जो भी संपत्ति आपके पास है आप उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा पाओगे, तो आपको कभी कृष्ण विस्मरण नहीं होगा, है ना। जब तक हम भगवान कृष्ण की और कृष्ण भक्तों की सेवा में लगे रहेंगे, हमेशा हम भौतिक क्लेशों से दूर रहेंगे। और एक और बात आप अपने पल्ले बांध लेना, आपकी समस्याओं का हल आपके किसी रिश्तेदार के पास नहीं है। प्रभुपाद ने कई बार बहुत जोर दे के बोला कि देर इज नो मेटीरियल सोल्यूशन टू मेटीरियल प्रॉब्लम, भौतिक समस्याओं का कोई भौतिक समाधान नहीं, भौतिक समस्या का, हर एक भौतिक समस्या का एक आध्यात्मिक समाधान है, और वो आपके रिश्तेदार आपको नहीं दे सकते। अगर आपको भौतिक प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ भी टेंशन है, तो आप सबको ये इस्कॉन फरीदाबाद के सेंटर में आना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भक्त हैं जो सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम भक्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, उनसे मार्गदर्शन नहीं लोगे, आप लिखवा लेना, आप चेक कर लेना, 5-7-10 साल आप झेल लो, अगर झेल लें आप चेक कर लेना कि कभी भी हम सुरक्षित अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी हम अपने मन में सुख का अनुभव नहीं करेंगे। अगर सुख का अनुभव करना है तो हमें भक्तों का मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। और मार्गदर्शन का मतलब, मार्गदर्शन का यह मतलब नहीं है कि अगर किसी, अगर आपको भक्तों ने बोला कि देखो आप ये दो चीजें करो तो एक कर लो, एक मत करो। मार्गदर्शन लेने का मतलब है भक्तों ने जैसा आपको समझाया आप वैसा करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको करने में, आप वापस उस भक्त के पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो, प्रभु जी आपने हमें ये बताया था, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज इसका समाधान करो, कैसे करो, वो आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचो कि उन्होंने बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी अव्यवहारिक बात बता दी, हो ही नहीं रही, चलो छोड़ो इसको, जो हो रही है वो कर लेते हैं, वो अच्छी मानसिकता नहीं है, है ना। अच्छी मानसिकता ये है कि हम पूर्णतः भगवान की शरण ले, पूर्णतः हम जो प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं उनकी शरण ले, उनसे अपनी समस्याएं, अपने हृदय को खोलें और उनसे पूछें कि मैं कैसे सुखी रह सकता हूं, जैसे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ये जो श्लोक मैंने अभी आपको बताया यमुनाचार्य का, ये श्लोक रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जाके किसको बोला था, रामकेली में चैतन्य महाप्रभु को बोला था उन्होंने ये श्लोक। और रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस संसार के सबसे अधिक विद्वान थे, और वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने जाके बोला, रामकेली में जब पहली बार दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु के, उन्हें बोला कि आप प्लीज हमें बताएं कि हम कौन हैं, हम यहां कैसे आ गए इस भौतिक संसार में, हम क्यों इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहे हैं, हम। फिर उन्होंने ये श्लोक बोला यमुनाचार्य जी का कि हम निरंतर आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप प्लीज हमें अपनी सेवा में लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप इतनी दीनता मत दिखाओ, मेरा हृदय फटा जा रहा है। दीनता का मतलब है, दीनता का मतलब सिर्फ जिज्ञासा करना नहीं है, दीनता का मतलब है जो आपने जिज्ञासा की, जो आपने सुना, उसको वापस जाके अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारना। इसीलिए हम दूसरे सभी भक्तों को प्रभु कह के बुलाते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं। और जब इनिशिएशन होती है इस्कॉन में तो उसको क्या बोलते हैं, दास, है ना। जैसे मेरा नाम सनातन कृष्ण दास है, तो दास शब्द इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आप पहले तो अपने आप को नहीं समझ रहे थे कि मैं सर्वेंट हूं, कम से कम अब आपके नाम के साथ ही लग गया दास, कम से कम अब तो सोचना शुरू कर दो, कम से कम अब तो अपने आप को दास मानना शुरू कर दो। और जो दास है वो हमेशा अपने प्रभु, अपने स्वामी, जो आपके जो सीनियर वैष्णव है, उनकी शिक्षाओं को, उनके सॉल्यूशंस को बहुत ही गंभीरता से लेता है और अपने जीवन में उतारता है। और आप, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके साथ बता रहा हूँ, अगर आप जितना अपने सीनियर जो आपके वैष्णव है, जैसे सर्वसाक्षी प्रभु, गोपेश्वर प्रभु और भी होंगे, मैं ज़्यादा भक्तों को नहीं जानता यहाँ पर, अगर आप उनसे, उनमें बहुत श्रद्धा रखेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे त्रिताप से बच सकते हैं, कैसे चार प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो उसको आप जीवन में उतारेंगे उनकी बात को, तो आप देखना आपका जीवन कितनी जल्दी बदल जाएगा। जितना लेट करेंगे हमारा नुकसान है, जितनी जल्दी हमारे जो भक्त हैं उनकी शिक्षाओं को, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। बहुत सारे भक्त होते हैं बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, कुछ भक्त होते हैं धीरे धीरे प्रगति करते हैं, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भक्त होते हैं वो सीनियर वैष्णव की बात को ज़्यादा गंभीरता से जीवन में लेते हैं, कई भक्त थोड़े कम गंभीरता से लेते हैं, तो जो कम गंभीरता से लेते हैं वो भी प्रगति करते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रगति नहीं करते, करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं। जो ज़्यादा गंभीरता से अपने जीवन में उतारते हैं वो ज़्यादा प्रगति करते हैं। तो आप सब प्लीज़, ये जो मंदिर है इस्कॉन के, ये भक्तों का संघ और भक्तों की सेवा के निमित्त है ना, आप इसका पूरा लाभ उठाएं। आप पहले संघ लें और इस स्तर पे पहुँचे कि आप आगे दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की ये हार्दिक इच्छा है कि आप में से हरेक व्यक्ति गुरु बने, हरेक व्यक्ति जाकर दूसरे लोगों का मार्गदर्शन। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आमार आज्ञा है गुरु है तारे देश, मेरी आज्ञा है गुरु बनो। क्यों? क्योंकि मैं अकेला सबको कृष्ण प्रेम रूपी फल नहीं बांट पा रहा हूँ। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप प्लीज़ आगे आओ, आप प्लीज़ पहले हेल्प लो और इस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप आगे लोगों की हेल्प कर सको। और ये मंदिर जो है ये बहुत छोटा मंदिर लगना चाहिए, आप लोगों को लगना चाहिए कि 50,000 गज के अंदर ये मंदिर होना चाहिए, इतने भक्त आप लोग जाओ और बाहर जाके इतने भक्तों को लेकर आओ। सब लोग बहुत ही दुख में जीवन बिता रहे हैं, आप प्लीज़ जाओ और जाके उन लोगों के जीवन में कुछ आशा की किरण जगाओ, उन लोगों को कुछ सुख की अनुभूति प्रदान करो, उन सब लोगों को यहाँ पर लेके आओ ताकि वो लोग भी जिस प्रकार आप कुछ सुख का अनुभव कर पा रहे हैं उसी प्रकार वो लोग भी सुख का अनुभव कर पाए। हरे कृष्णा।